ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्याम् उ ह वा एते षट् इन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यवः एव ते तत् यथा पुरुषस्य धनं यत् किञ्चित् धर्म औपैकम् बहुकृच्छ्र अधिगतम् साक्षात् परम पुरुष आराधन लक्षणः यः असौ धर्मः तं तु सांपराये उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवण आस्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्य उपभोगेन पुनाथस्य अजितात्मनः यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते तद् यथा पुरुषस्य धनं यत् किञ्चित् धर्मोपैकं बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो योऽसौ धर्मः तं तु सांपराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन पुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चित् धर्मोपैकम् बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु सांपराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शन श्रवणास्वादनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन पुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। आप आवृत्ति करेंगे। यस्याम जिसमें उह निश्चय ही वा अथवा एते ये सब षट इंद्रिय नामान जो छह इंद्रियां मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं कर्मणा अपने कर्म के द्वारा दस्यवह दस्यो लुटेरे एव निश्चय ही ते वे तत् वह यथा जिस प्रकार पुरुषस्य व्यक्ति का धनम धन यत् जो भी किंचित थोड़ा धर्म औपैकम धार्मिक सिद्धांतों का साधन बहुकृच्छ अधिगतम अतीव श्रम से उपार्जित साक्षात प्रत्यक्ष परम पुरुषाराधन लक्षण यज्ञ इत्यादि के द्वारा भगवान की पूजा करना जिनके लक्षण हैं यह जो असौ वह धर्म धार्मिक सिद्धांत मर्यादा तम उसको तू किंतु सांपराय मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के लाभार्थ उदाहरणती बुद्धिमान घोषित करते हैं तद्धर्म्यम धार्मिक वर्णाश्रम के पालन से संबंधित धनम धन दर्शन दर्शन द्वारा स्पर्शन स्पर्श द्वारा श्रवण श्रवण द्वारा आस्वादन स्वाद के द्वारा अवघ्राण सुंघ कर संकल्प निश्चय द्वारा व्यवसाय निष्कर्ष रूप में गृह घर में ग्राम्य उपभोगे न भौतिक उपभोग द्वारा कुनाथस्य भ्रमित बद्ध जीवात्मा का अजितात्मन जिसने अपने पर विजय प्राप्त नहीं की यथा जैसे सार्थस्य इंद्रियों की तृप्ति में रुचि रखने वाले जीवात्मा का विलुम्पन्ती लूट लेते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान हैं। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपने तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव के दर्शन घ्राण आस्वाद स्पर्श श्रवण संकल्प विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार बद्ध जीव अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थ धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित होता है किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। तात्पर्य पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम अग्रे धावती धावती वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वह धनी विद्वान सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है जिस किसी व्यक्ति के पास ये सभी संपत्तियां होती हैं उसे यह समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावना मृत के विकास के निमित्त हैं। दुर्भाग्यवश मार्ग से भ्रमित व्यक्ति अपने उच्च पद का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लुटेरे की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है वह लुटेरी इंद्रियों द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग सरलता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के विकास में कर सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो धन तथा अवसर प्राप्त होता है उसे इंद्रिय तृप्ति में नष्ट न किया जाए। वे कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है। यह कृष्ण भावनामृत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्तियों को मन तथा पांच इंद्रियों पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन को व्यय न करे। इंद्रियां चाहती हैं कि सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाएं, फलतः मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय किया जाए। इसी प्रकार जिह्वा केवल अच्छे भोजन का आस्वादन करना चाहता है, जो खरीद कर जैसे श्री मूर्ति को समर्पित कर किया गया हो। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियां का नियमन एवं सदुपयोग कृष्ण भावनामृत के विकास में किया जा सकता है। इस प्रकार अपने उत्तम पद को सांसारिक इंद्रिय तृप्ति यथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुआ के लिए विनष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इस भौतिक जगत में मोटर कार चलाकर रात्रि क्लबों में समय नष्ट कर या जलपान गृहों में घृणित भोजन का स्वाद लेकर मनुष्य अपने वैभवशाली पद को खो देता है। इस प्रकार लुटेरी इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत श्रम से संचित संपत्ति को लूट लेती हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी पीछे के अध्याय में आप लोग वार्ता सुन रहे थे जट भरत जी का और रहुगण, ये दो व्यक्ति की वार्ता चल रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो वार्ता पूरी हो गई है और उसका प्रभाव भी आप सुने। गुडाकेश प्रभु जैसा बतला रहे थे, क्षण संगे न, थोड़े समय का संग प्राप्त हुआ जट भरत जी का, और उसी से रहुगण अपने देहात्म बुद्धि को विसर्ज त्याग दिए। और सुखदेव गोस्वामी अपनी टिप्पणी देते हैं कि जो महत्पुरुष हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनके संग का यही प्रभाव होता है। एक तरह से वार्ता का क्या प्रभाव हुआ यह बतला करके एक उपसंहार ही कर रहे सुखदेव गोस्वामी। तब तक के परीक्षित महाराज एक प्रश्न कर दिए, ये जो रूपक का वर्णन किए पीछे वो तो विद्वान व्यक्ति द्वारा रचित है और उसको बुद्धिमान व्यक्ति ही आसानी से समझ सकते हैं। रहुगण कुछ प्रश्न नहीं किए, वे तो समझ गए क्योंकि अधिकृत कृताधिकार उनका अधिकार था। लेकिन परीक्षित महाराज शायद हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि बात पूरी पूरी समझ में नहीं आई, चूंकि ये विद्वानों के लिए है। जैसा आप पीछे के अध्याय में रूपक सुने कि कोई बनिया का समूह है, वो जंगल के दुर्गम पथ में जाता है तो उसके पीछे पीछे लुटेरे लगे हुए और उसको सियार और कुत्ते घेरे हुए हैं। वो कभी कभी किसी लता पर किसी वृक्ष के डाली को पकड़ करके झूलने लगता है, कभी कभी वो गंधर्व नगर को देखने लगता है। वो जट भरत जी ऐसे प्रवचन कर रहे हैं इस मार्ग का कि बहुत दुर्गम मार्ग है। हो सकता है राहुगण इसको समझ गए, उनको नहीं कोई कठिनाई हुई और वे तैयार हो गए इस मार्ग से बाहर जाने के लिए, अपने देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिए। लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो रूपक दी है इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। और वास्तव में हम लोग कुछ कुछ समझ गए, और इसलिए कि उस समय भी कुछ है इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया। लेकिन मूलतः जट भरत जी उस समय कोई स्पष्टीकरण नहीं किए। जब परीक्षित महाराज प्रश्न किए, सुखदेव गोस्वामी इसका स्पष्टीकरण कर रहे और कह रहे हैं कि ये जो भवाटवी कहा जा रहा है यह वास्तव में संस्कृति है। हमारा जन्म मृत्यु का क्षेत्र है, इसी को भवाटवी कहा गया है। और इसमें बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। और इस भवाटवी को, इस संसार को कह रहे हैं कि बहुत अपवित्र है, श्मशानवत। जैसे श्मशान है तो हम मुर्दे आते रहते हैं, तो श्मशान हमेशा अपवित्र ही होता है, कभी वो पवित्र नहीं होता है। वैसे ये संसार अपवित्र है और इसमें जीवात्मा स्वार्थ पर, जैसे बनिया का कोई समुदाय है और धन के लोभ से जंगल में घुस जाता है, जो बहुत घना जंगल है, बिहड़ मार्ग है, उसमें भी प्रवेश करता है क्योंकि उसको लोभ है। कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है कि बहुत घाटी में होता है, हमें बहुत इस चीज का अनुभव नहीं है, लेकिन एक औषधि का नाम आप लोग सुने होंगे, शिलाजीत। वो बहुत महंगा होता है, लेकिन शिलाजीत के विषय में कहते हैं कि जहाँ एकदम स्ट्रेट पहाड़ है और उसी के पत्थर के बीच से निकलता है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो जो छोटी जाति के लोग हैं, मुसहर इत्यादि हैं, तो एक तरह से अपने जान पर बाजी लगा करके वहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों को कुछ भक्त लोग कैमूर के घाटी में दिखा रहे थे, जैसे कोई घाटी है, घाटी का मतलब नीचे गड्ढा है और पर्वत एकदम स्ट्रेट है, ऐसा स्लोप नहीं है कि वहाँ पहुँच सकते, लेकिन वे जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा पत्थर पकड़ करके और वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने करके उसको कलेक्ट किए और बनिया लोग उसको प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो ऐसा हाईवे जैसा नहीं है, कहीं कहीं बहुत घना जंगल होता है। और जंगल का मार्ग विचित्र है, छोटी छोटी नदी है। अब उस नदी को पार करना सामान्य रूप से कोई कठिनाई नहीं है, से बीच में पत्थर रखे हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पैर दे करके पार करते, लेकिन थोड़ी सी वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाता है, अब उसको तैर करके पार करना पड़ेगा। हम लोगों को तो झारखंड प्रीचिंग से कुछ कुछ है जंगल के मार्ग का अनुभव हो गया है। लोग कह रहे हैं कि जैसे बनिया है तो धन के लोभ में जंगल में प्रवेश कर जाता है और उसको बहुत कष्ट सहना पड़ता है, तो उसी प्रकार ये जो जीव समुदाय है जो भोग के लोभ में इस संसार में फंस गया है और विविध प्रकार का कष्ट भोग रहा है। कष्ट विविध प्रकार का है। जंगल में कहीं कहीं मक्खी मच्छर बहुत होते हैं, बहुत काटने लगते हैं डांस से, कहते हैं बड़ा बड़ा मच्छी मक्खी होती है। और इस संसार में भी देखते हैं कि बहुत कठिनाई से धन अर्जित करते हैं, तब तक सरकार के तरफ से कई एक नोटिस आ जाता है, इतना परसेंट बहुत कष्ट का है। जो हो, ये भवाटवी का वर्णन किया गया है तो कह रहे हैं कि इसमें दस्यु लग जाते हैं और बनिया के धन को लूट लेते हैं। वे जंगल में दस्यु लग जाते हैं, इस भवाटवी में कोई जीव चल रहा है, जीव समुदाय चल रहा है, तो दस्यु कौन है? कभी कभी देखा जाता है कि कोई प्रकट दस्यु तो नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जस्याम ओ वा एते षट इंद्रिय नामा न कर्मणा एव दस्यव एव ते, कह रहे हैं कि हम इस भवाटवी में चल रहे हैं, इस संसार में चल रहे हैं, तो जो हमारी इंद्रियां हैं, छह इंद्रियां हैं, वो कह रहे हैं कि कर्मणा दस्यव एव, ये अपने कर्म से दस्यु ही हैं। भाई क्यों इसको दस्यु कह रहे हैं, क्या इनका कर्म है? तो कह रहे हैं कि तद यथा पुरुषस्य धनम यत किंचित धर्मोपकैकम बहुकृच्छ्राधिगतम साक्षात परम पुरुष आराधन लक्षण येषो धर्मस्तम तु संपराय उदाहरन्ति। कह रहे हैं कि बहुकृच्छ्राधिगतम, बहुत परिश्रम करके कुछ धन अर्जित करते हैं, और यत किंचित धर्मोपैकम, जो धर्म है वो धर्म, जो धन है वो धर्म के उपयोगी है। वास्तव में है धन केवल धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं। आप श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक अध्याय में, दूसरे अध्याय में है सुत गोस्वामी का प्रवचन सुनते हैं, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थार्थाय उपकल्पते, कोई भी कार्य कर रहे हैं और उससे भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तो यही समझिए कि वह व्यर्थ है, परिश्रम मात्र है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादय यदि रति श्रम एव ही केवल। धर्म स्वनिष्ठित, खूब अच्छा से अपने धर्म का संपादन कर रहे हैं और भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, भक्ति में अभिरुचि नहीं हुई, तो ये समझिए कि वह व्यर्थ है, केवल श्रम मात्र है। भाई कोई कह सकता है कि कुछ तो प्राप्त होता है, धर्म करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं तो भोग तो प्राप्त होता है, तो कह रहे हैं कि ना धर्म से यापवर्गस्य नार्थाय उपकल्पते, शास्त्र की दृष्टि से चलें तो कुछ आपको धार्मिक कृत्य कर रहे हैं तो भोग के लिए नहीं है, उससे कुछ भोग प्राप्त हो गया और आप भोगने लगे तो धर्म का लक्ष्य वह नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म का आचरण मुक्ति के लिए करते हैं, वे पैसे के लिए, साधन के लिए नहीं। और नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत, और आपको धन की प्राप्ति है तो धन केवल धर्म के लिए है। कह रहे हैं कि नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ का एकांतिक लाभ, एक अर्थ, एक प्रयोजन वह धर्म है, उसका प्रयोजन भोग नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति बहुत कठिनाई से धन अर्जित करता है और धर्मोपैकम, वो जो धन है तो उसका उपयोग धर्म में करना चाहिए। अरे भाई क्या धर्म, कुछ लक्षण बतलाइए, तो कह रहे हैं कि साक्षात परम पुरुषाराधन लक्षण, भगवान का साक्षात यजन किया जाए, यज्ञ किया जाए। योसौ धर्मस्तु संपराय उदाहरणति, और धर्म में पैसा को लगाएंगे तो इसका लाभ अगले जीवन में मिलेगा। तो वास्तव में किसी के पास धन है तो शास्त्र के दृष्टि से उसका ऐसा उपयोग करना चाहिए कि अगले जीवन में उसका लाभ मिले। हम यदि धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं तो हमें उत्तरोत्तर सुविधा अधिक मिलती जाती है, और उस सुविधा का उपयोग धर्म में करते जाएंगे तो अंततः भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो धर्म को ऐसे स्थापित किया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि एक तो व्यक्ति बहुत कठिनाई से धर्म धन प्राप्त करता है और उसका उद्देश्य है भगवान की आराधना करना जिससे उसका लाभ अगले जीवन में मिले, लेकिन कुनाथस्य ये जीवात्मा भ्रमित है और जिस धन का उपयोग धर्म के लिए करना चाहिए, भगवान की आराधना के लिए करना चाहिए और उसी को दर्शन स्पर्शन श्रवण आस्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगे न, उस पैसा को उड़ा देता है। कहाँ उड़ा देता है? और कुछ देखने के लिए, आँख को तृप्त करने के लिए। आँखें ही प्रेरित करती हैं कि अच्छा रूप चाहिए, और कोमल कोमल स्पर्श के लिए, कुछ अच्छा गीत सुनने के लिए, कुछ स्वाद लेने के लिए, कुछ गंध लेने के लिए, ये सारा पैसा को इंद्रियां प्रेरित करके उड़ा देती। तो एक तरह से आपको लूट रही है इंद्रियां, फोर्स कर रही हैं। जो धर्म में पैसा खर्च होना चाहिए, इंद्रियों का ऐसा वेग है कि भोग में पैसा खर्च हो जाता है। इस अर्थ में इंद्रियां लुटेरा है, और कह रहे हैं कि छह इंद्रियां संकल्प व्यवसाय मन के दो वृत्ति को दे रहे हैं, मन बुद्धि को एक में ग्रहण करके कि मन में ही संकल्प होता है। पहले संकल्प होता है, निर्णय करते हैं, इसके बाद ही भोग करते हैं। तो मन भी दस्यु है, लेकिन अजितात्मन, जिस व्यक्ति का इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है उसी व्यक्ति के लिए इंद्रियां दस्यु हैं। जिस व्यक्ति को इंद्रियों पर नियंत्रण है तो उसकी इंद्रियां दस्यु नहीं है, वे तो भोग के लिए प्रेरित ही नहीं करेंगे, पैसा नहीं खत्म होगा, वे कैसे दस्यु। और कोई जंगल में रहे या गांव में रहे शहर में रहे, इंद्रियां उसके साथ हैं, और यही सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े दस्यु हैं। जब प्रियव्रत महाराज राज्य लेना स्वीकार नहीं कर रहे थे, और ब्रह्मा जी आकर के उनको समझाने लगे और कह रहे हैं कि देखो हमें दोष बुद्धि मत करना, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, यही समझो कि हमारे मुख से भगवान ही बोल रहे हैं, पहले ही लॉक लगा दिए। ब्रह्मा जी कहे तो अब अपने गुरु जी के बात से तुलना करके ये मत समझिएगा कि हम ठग रहे हैं, कुछ झूठा बोल रहे हैं, या हमें दोष मत कीजिएगा, यही समझिए कि हमारे मुख से भगवान ही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी के कहने का और आशय है कि हम एकदम भगवान की बात बोल रहे हैं, वेद के विरुद्ध बात नहीं बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप विवाह कर लीजिए, गृहस्थी कर लीजिए, इसमें कोई क्षति नहीं है। वो इस विषय में सिद्धांत दे रहे हैं कि भयं प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात्, जो व्यक्ति उन्मत्त है, सावधान नहीं है, तो उस व्यक्ति को तो वन में भी भय है। वे क्यों वन में भय है? यतः आस्ते सहसत् सपत्ना, क्योंकि उसके छह शत्रु उसके साथ ही जा रहे हैं, वन में जा रहे, कहीं जा रहे हैं, तो छह इंद्रियां तो आपके साथ ही हैं। और जितेंद्रियस्य आत्मबुधेर जितेंद्रियस्य आत्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किम् न करोत्यवद्यम्। और जितेंद्रियस्य, जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, और जो प्रमत्त नहीं है, सावधान है, बुद्धिमान है, तो गृहाश्रमम किम न करो त्यवत्यम, वह गृहस्थी में ही है तो उसकी इंद्रियां उसका क्या बिगाड़ लेंगी। जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं यही दस्यु हैं और ये बहुत तंग करती हैं। प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि कभी कभी जो आत्मा की बहुत भारी फजीयत हो जाती है, जिह्वाई कतो चित विकर्षति मां वितृप्ता, जिह्वा एक तरफ खींचती है और कभी तृप्त होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिह्वा के एक दो मांग को पूरा कर दें तो इसके बाद वो शांत हो जाएगी, तृप्त होने वाली नहीं है। जिह्वा एक तरफ खींच रही है और शिष्णोन्यतस स्पर्श इंद्रिया एक तरफ खींच रही है कोमल स्पर्श के लिए, स्त्री के स्पर्श के लिए, और पेट के वेग अलग खींच रहा है श्रवणम कुतश्चित, और कान कहीं खींच रहा है घ्राणियों नतस चपल अद्रिक, नाक कहीं खींच रहा है और आंख कहीं खींच रहा है। तो कह रहे हैं कि बहुवा सपत्न गेह पतिम लुलंती, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की कई एक स्त्रियां हो और सब स्त्रियां अपने पति को अपने घर में अपने बेड पर लेने के लिए खींचे, और उस पति की जो दुर्गति होती है वही दुर्गति इस जीवात्मा की है। नाक अपने तरफ खींच रहा अपने विषय के तरफ कि हमको अच्छा गंध चाहिए, कान अपने तरफ खींच रहा हमको मधुर संगीत चाहिए, स्पर्श अपने तरफ खींच रहा, और बहुत भारी फजीयत में है जीवात्मा। इसी से कह रहे हैं कि यह तो श्मशान जैसा अपवित्र है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भाई इंद्रियों को विषय ही चाहिए और इनको धारा बदल करके विषय दिया जा सकता है, और इसका लाभ होगा कि जो इंद्रियां हमारी विरोधी हैं प्रतिरोधी हैं वही सहायक हो जाएंगी और उस पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। जीवात्मा की यही दुर्गति है कि इंद्रियां लूट रही है। जैसे आंख है इसको रूप के तरफ खींच रहा है अच्छा रूप के लिए, अभी आंख को रूप ही चाहिए तो क्यों नहीं उसको भगवान के तरफ ही ले चलते हैं, क्योंकि भगवान से सुंदर रूप तो कहीं नहीं है, आंख को तो रूप ही चाहिए। और मन या इंद्रियों की एक विशेषता है कि कितना हूं संसार का रूप देते जाइए इसे संतुष्ट होने वाले नहीं है, अंततः इनकी संतुष्टि होगी कृष्ण का दर्शन करके। यदि कृष्ण के रूप का थोड़ा भी इसको स्वाद मिल गया तो अब दूसरे रूप को देखना ही नहीं चाहेगी। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पैसा को भगवान के दर्शन में खर्च करना चाहिए, वे आंख को रूप चाहिए और भगवान का दर्शन करेंगे तो कौन सा रूप बाकी रह जाएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में भगवान के लीला का उपसंहार कर रहे हैं, वो कहेंगे विभ्रत सकल सुंदर सन्निवेश, भगवान के श्री विग्रह का वर्णन कर रहे हैं कि विभ्रत सकल सुंदर सन्निवेश, भगवान जो श्री विग्रह धारण किए सकल सुंदर सन्निवेश, जो भी सौंदर्य है उस श्री विग्रह में पाया जा सकता है, सकल सुंदर सन्निवेश। इस संसार में आप देखते हैं कि कमल में सौंदर्य है और कृष्ण के श्री विग्रह में, मोर के पंख में सौंदर्य है और श्री कृष्ण के विग्रह में उस सौंदर्य, सारा सौंदर्य है सकल सुंदर सन्निवेश। जो सौंदर्य आप देखे हैं नहीं देखे हैं, जो सौंदर्य सुने हैं या नहीं सुने हैं, या जिस सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं या कल्पना भी नहीं कर सकते, सारा सौंदर्य कृष्ण में है। आगे उस विग्रह को और स्पष्ट कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि मूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या, कि भगवान ने यहां अवतार लेकर के क्या किए, और तीन चार काम भगवान का बतला रहे हैं कि सबके आंख को छीन लिए। भगवान अवतार ग्रहण किए, कृष्ण अवतीर्ण हुए, और सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में महत्वपूर्ण चार काम किए। भी क्या क्या विचार है, वो करें कि सबके आंख को छीन लिए, सबके कान को छीन लिए, और सबके चित्त को छीन लिए। तीन काम किए, और चौथा क्या किए कि इस संसार में अपना जस भर दिए। वो कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णा, लोगों के आंख को छीने, आंख को कैसे छीने, क्योंकि स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या अपने श्री विग्रह से, अपने श्री विग्रह, उनके श्री विग्रह का विशेषण दे रहे हैं कि लोकलावण्य निर्मुक्त्या। निर्मुक्ति का अर्थ त्याग और दान दो अर्थ में होता है। डिक्शनरी में देखेंगे तो निर्मुक्ति का मीनिंग दान त्याग, तो अर्थ होगा कि भगवान का श्री विग्रह ऐसा है कि सारे संसार के सौंदर्य का त्याग करा देता है। अब जो भगवान के रूप का दर्शन किया तो उसके आंखें कहीं टिकेंगे ही नहीं, आंख के देखने की प्रवृत्ति समाप्त तो हो गई। इसी अर्थ में गोपियां कहते हैं कि अक्रूर बहुत भारी पाप लगेगा विधाता को कि हमको आंख दे करके और हमारे आंख को छीन रहा है। मानो विधाता करे कि अक्रूर ऐसा नहीं कर रहे, आपके आंख को नहीं छीन रहे हो, तो कृष्ण को ले जा रहे हैं। और गोपियों का आशय है कि कृष्ण को ले जाएंगे तो हमने देखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, आंख कुछ देखे ही नहीं, तो एक तरह से आंखें ही चौपट हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णा, अपने श्री विग्रह से जैसे संसार का रूप नष्ट हो जाता है, ये त्याग के अर्थ में। कृष्ण के श्री विग्रह के सामने संसार एकदम फीका हो जाता है, तो यह तो त्याग के अर्थ। यदि दान के अर्थ में ले, और कृष्ण के सौंदर्य के एक सीकर से सारे सौंदर्य संसार में सौंदर्य प्रादुर्भूत हुआ। सीकर कहते हैं किसी समुद्र में एक लकड़ी नीब का सीक डाली है तो उसमें कुछ पानी आ जाएगा, कुछ पानी सूखेगा ना, ऐसे झाड़ी है तो जो जल बिंदु गिरता है, जल कण गिरता है, उसको सीकर कहते हैं। और चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन है कि संसार में जो भी सौंदर्य है तो कृष्ण के सौंदर्यामृत का सीकर है, केवल एक छोटा अंश है। और कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णा, अपने श्री विग्रह से लोगों के आंख को खींच लिए, और अपने वाणी से उसके स्मरण करने वाले के चित्त को खींच लिए, और पदस्थान इच्छताम क्रिया, और अपने चरण चिन्ह से लोगों के क्रिया को छीन लिए। कोई कितना भी अर्जेंट कार्य के लिए जा रहा है, चाहे कचहरी में हाजिरी लगाने के लिए जा रहा है, या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जा रहा है, दुकान खोलने के लिए जा रहा है, कृष्ण का चरण चिन्ह दिख गया तो आगे नहीं बढ़ा। या कोई स्त्री पानी भरने के लिए जा रही है, रास्ते में कृष्ण का चरण चिन्ह दिख गया तो आगे बढ़ी ही नहीं, तो करें कि अपने चरण चिन्ह से लोगों की क्रिया को नष्ट कर दी। अब किसी को असंतोष होगा, फिर भी उस समय हमें भी जन्म मिला होता तो हम भी देख लिए होते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे उसकी भी व्यवस्था भगवान कर दी, अपने कीर्ति को भर दिए कि तमो नया तरिष्यन्त, भविष्य में लोग माया को पार कर जाएं जिस कीर्ति को सुन करके, उसको पृथ्वी पर भर करके तब अपने स्वधाम को गए। और हमारे इंद्रियों को विषय चाहिए, ओ जैसे आंख है ओ कृष्ण के रूप से, रूप के अतिरिक्त तो और कोई उपयुक्त विषय आंख को नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण का जैसा सौंदर्य है उसके आगे दूसरा सौंदर्य है ही नहीं है, ऐसा सौंदर्य है कि किसी भी सौंदर्य से तुलना नहीं की जा सकती, और कदाचित कोई तुलना करने का प्रयास किया तो उसको गाली सुनना पड़ेगा। कृष्ण के सौंदर्य का कोई तुलना कर दिया तो तैयार रहे कि गाली उसको सुनना पड़ेगा। कह रहे हैं सूरदास जी, उपमा हरितन देख ल जानी। इस संसार में हम लोग तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, तो भगवान के रूप को देख करके सारी उपमाएं लज्जित हो गई, और इतना लज्जित हुई कोई जल में कोई बन नहीं रही, दूरी कोई कोई गगन समानी। वो लज्जित होकर के कोई कोई तो जल में रहने लगे, कोई वन में रहने लगे, और कोई कोई तो इतना लज्जा अनुभव किए उपमा के आकाश में चले गए। अब उदाहरण दे रहे हैं कि मुख निरखत शशि गयो अंबर से तट दसन छबिहेरी। भगवान के मुख को देख करके चंद्रमा तो आकाश में चले गए, और भगवान के दांत को देख करके बिजली भी आकाश में। मीन कमल कर चरण नयंडर जल में कियो बसेरी, और भगवान के हाथ पैर को देख करके कमल जल में लज्जित होकर के चला गया, और आंख को देख करके मछली जल में रहने लगी। और भुज देखी अहिराज लजाने विवरिन पैठ धाई, भगवान के बाह को देख करके नाग बिल में रहने लगा। उपमा देते हैं ना कि भगवान के बाह हैं तो सांप के समान चिकने हैं, मोटे हैं, कि इस वो लज्जित सांप इतना लज्जित हुआ भगवान के बाह को देख करके कि लज्जा के मारे बिल में रहता है। और कटि निरखत के हरिडर मानो बनबन रहे धुरायो, और कोई कोई भगवान के कमर की तुलना बाघ के सिंह के कमर से कर देते हैं। सिंह जब भगवान के कमर को देखा तो इतना लज्जा महसूस किया कि वन में ही रहता है, सामने नहीं आता है, समाज में नहीं आता है। और वे वहां चले गए तो चुपचाप नहीं बैठे हैं, अब वहीं रखे होंगे नेट की सुविधा वाईफाई। कहने की गाड़ी देत कबिन को बरनत फ्री अंग पटत देत, वे छिप करके लज्जित होकर के वहां रह रहे हैं, लेकिन कोई भी भगवान के अंग से तुलना कर देता है तो गाली देते हैं, वहीं से लिखते हैं। अब वो बहुत गाली देते हैं जहां तहां से, कवियों को बड़ा चिंता हुई वे क्यों वे गाली दे रहे हैं, तो अपना डेलीगेट बना करके सूरदास को भेजे कि भाई पता कीजिए गाली क्यों दे रहे हैं। तो कह रहे सूरदास हमको शर्मावत नाउ हमारो ले, वे लोग कह रहे हैं उपमाएं कि कवि लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं, हमारा नाम लेकर के हमको शर्म में डालते हैं, तो हमारा यही ऑब्जेक्शन है वर्णन करें हमसे तुलना ना करें। अब हमारा नाम लेकर के तुलना कर देते हैं तो हम लज्जा में पड़ते हैं। तो ऐसे भगवान का सौंदर्य है, भगवान का जो सौंदर्य है ये संसार में नहीं पा सकते। भगवान का स्फुरणा होते ही व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही उनके चित्त में कृष्ण की स्फुरणा हुई तो कह रहे मारम, कि यह कैसा स्फुरणा है, मार स्वयं न मधुर द्युत मंडलम। जैसे ही चित्त में कृष्ण की स्फुरणा हो रही है, चैतन्य महाप्रभु के मन में विचार आ रहा है राधा रानी के भाव में कि कामदेव हमारे हृदय में उदित हो रहा है क्या, मारा जो सारे संसार को व्यथित कर देता है वो कामदेव है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी अनुभव कर रही है कि ना इतना मधुरता तो कामदेव में नहीं हो सकते जितना मधुर लग रहा है। फिर उनके मन में विचार आ रहा है मधुरा दुति मंडलम नु, क्या ये मधुर प्रकाश का ही कोई घेरा है, ये है क्या, क्या हमारे हृदय में स्फुरित हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ना ये प्रकाश कितना भी मधुर हो तो इतना माधुर्य का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो कह माधुर्य में उन्नु, क्या स्वयं माधुर्य ही इस रूप में आ गया मनोनयनामृतम नु, कि क्या अमृत हमारे मन और नयन को सुखी करने के लिए ये है, ये है क्या, क्या चीज है। जो रूप राधा रानी के हृदय में स्फुरित हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में स्फुरित हो रहा है, उसके विषय में विकल्प कर रहे हैं। फिर राधा रानी करें भेड़ी मृजोनु मम जीवित बल्लभोनु, ना ना यह अमृत नहीं हो सकता, अमृत से इतना सुख नहीं मिलेगा। बेड़ी मृज वही व्यक्ति है, इसके अंग है, अमृत को तो अंग नहीं होगा। यह वही व्यक्ति है जो हमारे केसों को संवारता है। बेड़ी मृज दो अर्थ है, जो हमारे केस का मार्जन करता है, केस को संवारता है, या दूसरा अर्थ है कि जिसके चरण को हम अपने बेड़ी से झाड़ती हैं। कृष्ण के चरण में कुछ धूल लगा है तो राधा रानी को सेवा करने है, तो उनकी लंबी लंबी चोटियां हैं, तो अलग से कुछ कपड़ा नहीं जुटाती है, अपने बेड़ी को ही उलाट करके और चरण को झाड़ देती हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि बेड़ी मृज, जो जिसके चरण का मैं अपने बेड़ी से मार्जन करता हूँ, क्या वही व्यक्ति है? ये फिर उनके मन में दूसरा विचार है, दूसरा अर्थ लेंगे, कह रहे हैं कि बेड़ी मृज जो हमारे केसों को गुत्ता है, संवारता है, क्या वह व्यक्ति है? कृष्ण का एक नाम केशव है, केशव का एक अर्थ यही होता है कि जो राधा रानी के केस को संवारते हैं, ये उनके प्रवृत्ति। और खास करके रास लीला के समय जब राधा रानी के साथ कृष्ण अंतरित हो गए, गोपियां खोज रही हैं तो दिखा रही हैं कि देखो देखो अत्र चूड़यता अत्र कामिन्या अत्र केशव प्रसादनम कामिन्या कामिना कृतम। वे कई एक चिन्ह का अन्वेषण कर रहे थे, एक जगह दिखा रही हैं कि देखो यहाँ से पुष्प चुना है और यहाँ बैठ करके उस कामिनी का केस को संवारा है। राधा रानी के लिए कामिनी शब्द कह रहे हैं गोपिया, इस अर्थ में कि उनके मन में भावना है कि देखो हम कितना प्रेम करते हैं लेकिन हमारे प्रेम का कोई वैल्यू नहीं, कि हम सखियों को छोड़ करके अकेले चली गई, तो इस अर्थ में रखे कामनी है और कामिना कृतम कृष्ण के लिए करें कि वह कामी है। इस अर्थ में को अनुभव हो रहा है कि हम कृष्ण से इतना प्रेम कर रही हैं लेकिन हम कृष्ण के विरह में इतने दुखी हैं, हमारे दुख का उसको कोई अनुसंधान नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि इसी जगह पर उस कामनी का कामी के द्वारा केस प्रसादन किया गया, केस को संवारा गया। भाई एक प्रश्न होगा कि रात्रि के समय राधा रानी युद्ध से निकले, कृष्ण निकले, उस समय केस का श्रृंगार कैसे कर रहे हैं? भाई केस के श्रृंगार के लिए तो कंघी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आचार्यों का मत है कि राधा रानी हो सकता है कोई कंघी अपने बाल में खोस ली हो, स्त्रियां अपने सौंदर्य के लिए कुछ उपयोगी चीज रख लेती हैं, पिन को चूड़ी में खोस लेंगे क्या क्या, तो राधा रानी हो सकता है कि अपने जूड़े में एक कंघी रखी होंगी, उसी से संवार दिए। यह दूसरा विकल्प है कि कृष्ण इतने एक्सपर्ट हैं कि कंघी के जगह अपने अंगुली से ही पूरा झाड़ करके फिट कर दी, तो स्फूर्णा हो रही उस पर विचार कर रहे हैं कि बेड़ी मृज जीवित बल्लभ हो में, कि हमारे प्राण बल्लभ हैं। फिर निष्कर्ष न कर इतना जो मधुर है, इतना आनंद देने वाला है, तो निश्चित रूप से कृष्ण ही हमारे आंख को आनंदित करने के लिए सामने आ रहे हैं। और इस प्रकार हम यह कह रहे हैं कि कोई भी इंद्रियां हैं और सबसे अच्छे विषय कृष्ण है, सर्वेंद्रिय गुणांजनम, सारे इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले। और जो पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं अपने इंद्रियों के लिए, तो इंद्रियां एक तरह से हमको लूट रही हैं, हमारे प्रोग्रेस को रोक रही हैं, हमारा अच्छा भविष्य नहीं हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि उस पैसा को कृष्ण से जोड़ करके अपने इंद्रियों को ही सुखी करो, लेकिन कृष्ण को सेंटर में करके, तो इंद्रियां सुख भी अनुभव करेंगे और वे शुद्ध हो जाएंगे, वो पूर्ण नियंत्रित हो जाएंगे और ये जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। हरे कृष्ण। विलम्ब हो गया है, प्रश्न है।